ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा ने आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि संसद की प्रवर समिति ने विधेयक में कुल 17 बड़ी अनुशंसाएं की जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया। उनके मुताबिक सरकार ने एक और सिफारिश इसमें जोड़ी है कि कर्जदाताओं की समिति को आवेदकों का चयन करने के कारणों को दर्ज करना होगा क्योंकि इससे पारदर्शिता आएगी। सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक बैंक के एनपीए की कुल वसूली में दिवाला संहिता का 54% से अधिक का योगदान रहा है। सीतारमण ने कहा कि आईबीसी का कभी ये बुनियादी मकसद नहीं रहा कि इसे कर्ज वसूली के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि आईबीसी की व्यवस्था के कारण अब दिवाला से जुड़े मामलों के निस्तारण में कंपनियां पहले से बहुत बेहतर काम कर रही हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दी। सरकार ने 12 अगस्त 2025 को आईबीसी में संशोधन करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया था जिसमें दिवाला समाधान आवेदनों को स्वीकार करने में लगने वाले समय को कम करने के प्रावधानों समेत कई संशोधन प्रस्तावित थे। विधेयक को लोकसभा की एक प्रवर समिति को भेजा गया जिसने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आईबीसी में अब तक 7 बार संशोधन किए जा चुके हैं। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि देश में नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी, गरीबी और अन्याय नहीं बल्कि विचारधारा है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त बनाने के प्रयास पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण करने और कई बड़े काम हुए हैं तथा अब भारत नक्सल मुक्त इसी सरकार के शासनकाल में होने जा रहा है। शाह ने कहा कि भोले भाले आदिवासियों के सामने ये गलत विमर्श रखा गया कि उन्हें न्याय दिलाने और उनके अधिकार की खातिर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि अन्याय होने पर हथियार उठा लेना लोकतंत्र का तरीका नहीं है और ऐसी गतिविधि कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग सरकार की सुविधाओं से छूट गए थे क्योंकि वहां लाल आतंक की छाया थी। आज वो परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 70 साल में आदिवासी विकास से उपेक्षित रह गए तो दोषी कौन है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास पहुंचा। उन्होंने उल्लेख किया कि कई महत्वपूर्ण काम मोदी सरकार के दौरान हुए हैं और नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी इसी सरकार में हो रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय अर्धसैनिक बलों, विशेषकर कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्यों की पुलिस और स्थानीय आदिवासियों को जाता है। शाह ने कहा कि नक्सलवादियों द्वारा रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना गया कि वहां शासन व्यवस्था की पहुंच कम थी। गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पहुंचने नहीं दिया जहां मोदी सरकार विकास को घर घर पहुंचा रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपनी मजबूरियों के चलते देश को रेड कॉरिडोर बना दिया लेकिन मोदी सरकार ने उसे ग्रोथ कॉरिडोर दिया है। रेड कॉरिडोर देश के नक्सल प्रभावित इलाकों को कहा जाता है। शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और पिछड़ों पर गौर नहीं किया जिसकी वजह से गरीब, किसान और पिछड़े समुदाय के लोग हथियार उठाने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि समय पर हस्तक्षेप कर देश में नक्सलवाद के प्रसार को रोका जा सकता था। शिंदे ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प का संदर्भ लिया और कहा कि जो लोग कहते थे कि नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता उनके लिए यह करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने समय सीमा तय की और उससे पहले देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी किए। शिंदे ने कहा कि हमने आदिवासियों, कमजोर वर्ग के लोगों और पिछड़ों का विश्वास फिर से जीता है, उनकी बंदूकें छीनकर उन्हें सशक्त किया है। शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने के लिए निर्धारित समय सीमा को एक जुमला करार दिया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रही है बल्कि खनन गतिविधियों के लिए अपने लोगों को ग्रीन कॉरिडोर दे रही है। उलाका ने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे सिर्फ बल से खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि विकास से समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन के लिए लड़ाई नहीं बल्कि विश्वास की लड़ाई है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने के भाजपा सरकार के संकल्प को जुमला करार देते हुए कहा कि यह सरकार समय सीमा निर्धारित करती है कि नक्सलवाद एक साल में खत्म हो जाएगा, दो साल में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा, आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रहे बल्कि खनन शुरू करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर दे रहे हो। उन्होंने सवाल किया कि हिंदी पट्टी यानी मध्य भारत में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात आती है तो वहां कई सारे संघर्ष विराम समझौते आखिर क्यों होते हैं? जब आप पूर्वोत्तर में स्वायत्तता, संस्कृति और अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो आप मध्य भारत में यही बात क्यों नहीं करते? उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला स्थित झीरम घाटी में 2013 में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेताओं की जान जाने का उल्लेख करते हुए ये सवाल किया। उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रभु सरकार द्वारा नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कई कदमों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने लोकसभा में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा में भाग लेते हुए 2018 में महाराष्ट्र की यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा सांसद ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट की नाकामी थी कि सीआरपीएफ के 76 जवान अप्रैल 2010 में एक ही दिन छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए। तेलुगुदेशम पार्टी की बी शबरी ने सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा नक्सली हमले 2004 से 2014 में संप्रभु सरकार के दौरान हुए थे और विपक्षी पार्टी उस समय समस्या को समाप्त कर सकती थी लेकिन उसने इससे मुंह मोड़ लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती ने कहा कि बिहार में एक समय 23 जिले वामपंथी उग्रवाद की जकड़ में थे लेकिन आज लगभग पूरा बिहार नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस के ज्योत्सना महंत, भाजपा के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव और वाचिका है आकर्षिता सिंह।
राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक को लिया गया जिस पर चर्चा में हिस्सा ले रहे कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सुझाव दिया तथा इस बात पर हैरत जताई कि बलों के अधिकारियों के साथ अन्याय करने के लिए यह विधायी कदम क्यों उठाया जा रहा है। विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि यह विधेयक केवल सामान्य प्रशासन से जुड़ा नहीं है बल्कि यह संविधान के प्रावधानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हक ने कहा कि यह राज्य की भूमिका को सीमित करता है और संवैधानिक ढांचे को चुनौती देता है। उन्होंने दावा किया कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से इस बल के अधिकारों के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद किया जा रहा है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के एक निर्णय का घोर उल्लंघन करता है और सत्ता के विभाजन के संविधान के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के कई कर्मियों ने आत्महत्या की या नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इसका कारण काम का अत्यधिक दबाव, तनाव, पदोन्नति के कम अवसर तथा परिवार से दूरी आदि शामिल हैं। शिवा ने सरकार से अनुरोध किया कि यदि वो कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उनके संशोधनों को स्वीकार कर ले अथवा इसे संसद की स्थायी समिति या प्रवर समिति के पास भेज दे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने इन सुरक्षा कर्मियों के नाम पर देश भर में वोट मांगा, किंतु उनको ना तो शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और ना ही उन्हें समय पर पदोन्नति दी जाती है। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने सरकार से पूछा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले इन जवानों के बारे में अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद ये विधेयक क्यों लाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने कहा कि आईपीएस अधिकारी जहां 15 साल में 4 से 5 पदोन्नति पाते हैं, वहीं केंद्रीय सशस्त्र बल के अधिकारी एक भी पदोन्नति नहीं पाते हैं, जो अन्याय है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में इस बल में कर्मियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधेयक सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने और उसे निरस्त करने के लिए लाया गया है और इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से 5 केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ संस्थागत असमानता की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में अधिकारियों के लिए प्रोन्नति और कैडर समीक्षा की बात की है और सरकार को उन फैसलों को स्वीकार कर लेना चाहिए। चर्चा में आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, राजद सदस्य मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्रन वदिराजू, शिवसेना उबाठा के संजय राउत, कांग्रेस के विवेक तनखा, शक्ति सिंह गोहिल, भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, सुभाष बराला, अन्नाद्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरै, सपा के रामगोपाल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद उच्च सदन में आसन की अनुमति से सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए अपने अपने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। भाजपा के डॉ भीम सिंह, महाराजा संजा ओबा लिशंबा, माया नारोलिया और समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने अपने अपने मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए उठाए। इसके बाद उच्च सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आसन से विपक्षी दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए सौंपे गए प्रस्ताव की स्थिति के बारे में जानना चाहा। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन की बैठक फिर शुरू होने पर सिंघवी ने इस मामले को उठाते हुए सदन की कार्यवाही संचालित कर रहे उपसभापति हरिवंश से कहा कि विपक्ष को सभापति की ओर से इस मामले पर की गई कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। इस पर हरिवंश ने कहा कि वो देखेंगे। राज्यसभा में आज बीजू जनता दल बीजद के सदस्यों ने लोकसभा सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे द्वारा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज और आधिकारिक पत्र पटल पर रखवाए। इसके बाद बीजद नेता सस्मित पात्रा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पटनायक के खिलाफ अपमानजनक, गलत और मनगढ़ंत बयान दिए गए हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि बीजद इस बयान का पुरजोर विरोध करता है और इसी के विरोध में सदन से वॉकआउट कर रहा है। बीजद के सदस्यों ने इसके बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। भाजपा के लक्ष्मण ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्य मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे धर्म आधारित आरक्षण की व्यापक समीक्षा कराने की मांग की। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत, रागैया कृष्णैया, लहर सिंह सरोया, बीजद के मुजीबुल्ला खान, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, मनोनीत सुधामूर्ति और सतनाम सिंह संधू ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।